बनाया कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमाते भक्त प्रधान स्वामी के नाम है नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारण निर्देशेष श्रीवाणी पाश्चाचार्य चारण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो दिस इज अ short presentation on the meaning of the deity.
So, आज हम अर्चित विग्रह का क्या अर्थ है? उसके बारे में
कुछ. In Sanskrit, we call this the Archit Vigraha or the Shri Murti.
जिसको संस्कृत में श्री मूर्ति और अर्चित विग्रह कहते हैं.
Often, when people, ignorant people, let's say, or ordinary people, translate this word into English, then they call idols.
अंग्रेजी भाषा में इस अनुवाद अक्सर आइडल के रूप में किया जाता
है
यानी हम किसी मूर्ति पूजा या आइडल पूजा
दिस ऑफ कोर्स दे डोंट मे बी टेंड टू बी ऑफेंसिव इंटेंशनली बट एक्चुअली दे आर यूजिंग अ रॉन्ग यूज ऑफ द वर्ड
हो सकता है कि उनका किसी प्रकार का अपमान करने का उद्देश्य नहीं है परंतु वो सही शब्दावली नहीं उपयोग करते
So we should understand the difference between idols and archa vigrahas.
तो ये समझना आवश्यक है कि मूर्ति पूजा और विग्रह पूजा में अंतर क्या है?
So in the English language, the idol is usually associated with something which is imaginary.
अंग्रेजी भाषा में ये जो मूर्ति है, ये किसी ऐसी काल्पनिक वस्तु से संबंधित है.
Or concocted or not authorized.
या ऐसी कोई वस्तु जिसका कोई अधिकृत स्वीकार्यता नहीं है सर
एंड इन द क्रिश्चियन रिलीजन दिस एक्चुअली मींस इट इज कंप्लीटली अनबोनाफाइड क्रिश्चियन आइडल मींस कंप्लीटली अनबोनाफाइड
और क्रिश्चियन लोगों के धर्म में धर्म के अंदर इसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई
सो देयरफॉर व्हेन द न्यूज़पेपर्स से दे वर्शिप द आइडल इन द सो एंड सो टेंपल देन एक्चुअली मींस दे वर्शिप समथिंग वेरी अनबोनाफाइड
और उसके धर्म के अनुसार किसी मूर्ति की पूजा करना ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है
सो इन द क्रिश्चियन रिलीजन दे ऑफन हैव अ प्रॉब्लम विद कंकॉक्टेड फॉर्म्स
और उनके धर्म में किसी प्रकार के काल्पनिक और भावनाओं को नहीं स्वीकार किया
सो वी सी इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल फॉर इंस्टेंस दैट दिस होल स्टोरी ऑफ मोसेस एटसेट्रा एंड देन ही वेंट अप ऑन द माउंटेन एंड विजन केम डाउन एंड एवरीबॉडी वाज वर्शिपिंग आइडल्स
और आपके धर्म में देखते हैं कि मोसेस की कहानी में जब वो उस पर्वत पे गए और जब वो वहां से नीचे आते हैं तो उसके बाद वो देखते हैं कि सभी लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं
सो दे डिसाइडेड दे वुड नॉट वर्शिप गॉड दे वुड वर्शिप समबडी एल्स
पर उन्होंने ये निर्णय किया कि वो भगवान की पूजा नहीं करेंगे परंतु किसी और तत्व की पूजा करेंगे
सो एक्चुअली इन मोसेस स्टोरी दे गॉट अ गोल्डन कैफ एंड दे स्टार्ट वर्शिपिंग द कैफ गॉड
और फिर मोसेस के आगे अनुसार उन्होंने एक स्वर्ण के एक बछड़े की पूजा करना शुरू किया और मोसेस को देखकर बड़ा गुस्सा आया उसने सबका तिरस्कार किया
सो द वर्शिप ऑफ आइडल्स इज कंडेम्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड ऑफ कोर्स द इस्लाम मुस्लिम्स आल्सो यूज ओल्ड टेस्टामेंट दे कंडेम आइडल वर्शिप
तो इस प्रकार से दुनिया के सभी धर्मों में इस मूर्ति पूजा का खंडन किया गया
So, unfortunately, that word gets used a lot in India by innocent Indians, or whatever. They just use the word to mean the deities, but it's actually a derogatory term. It doesn't actually mean something.
So, दुर्भाग्यवश भारत में इस बात की बहुत भूल की जाती है कि हम अर्चित विग्रह पूजा को मूर्ति पूजा के समान ही समझते हैं.
So they had this problem in the Old Testament with the Jews and then the Christians, etc. People. Making up forms and worshiping them, so they can reject all of this.
तो दूसरे धर्मों में इस प्रकार से जब लोग किसी प्रकार की मूर्ति पूजा या किसी भी तत्व की मूर्ति के रूप में पूजा करते तो उसका खंडन भी होता था.
So we have the same problem everywhere in the world, not just in the Christian world. Everywhere in the world, the same problems.
और ये समस्या सारे संसार में देखी गई है.
So people tend to worship something.
लोगों की कुछ न कुछ तत्व की आराधना करने का की इच्छा हमेशा होती है
so they worship trees or rivers or rocks or mountains.
तो कभी वृक्षों की कभी नदियों की कभी पत्थरों की ऐसी पूजा करने लगते हैं
as you see in India, you should look anywhere, somebody worships something on the roadside, they got something.
और भारत में विशेष रूप से हम देखते हैं कि किसी भी चीज की पूजा होने लग जाती है.
And in the modern world, of course, the word idol has another significance. People get idolized, that is, human beings get idolized.
और आज के आधुनिक युग में तो ये भी देखा गया है कि मनुष्यों को इस प्रकार से पूजा जाने लगा है.
In the Western world, we have movie stars, and we have rock singers getting idolized.
पाश्चात्य देशों में जो फिल्मों के कलाकार हैं या जो रॉक स्टार्स हैं जो गायन करते हैं उनको भी इस तरह से पूजा जाता है.
And the same happens in India.
और भारत में भी यही हो रहा है.
So the movie stars get puja also.
और जो सिनेमा के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी भी बहुत पूजा होता है.
Their followers will make garlands and so many things for them, and they'll offer them garlands and worship them just like a deity.
और आम समाज के लोग जो इनसे प्रभावित होते हैं वो उनकी तरह तरह से पूजा करते हैं, उनके लिए हार मालाएं बांधते
हैं.
और राजनीति में भी यही सब हो रहा है.
So, this idea of deifying somebody or something is very common in the human species, India or wherever in the world.
तो मनुष्य समाज में देखा गया है कि किसी न किसी को पूजना ये बहुत आम बात है.
So it is good to worship, but we have to worship the proper form of the Lord, not the false forms.
तो पूजना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन सही तत्व की या भगवान की पूजा करना ही उचित है.
So of course, the deity, the arts of forms are representatives of the Supreme Lord.
तो ये समझना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अर्च विग्रह हैं ये साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं.
So the first question comes, who is that Supreme Lord?
तो पहला प्रश्न तो ये है कि परम पूज्य भगवान कौन है.
And the second question is, can he be represented by anything in the material world?
और दूसरा प्रश्न ये है कि इस भौतिक संसार के किसी भी तत्व के द्वारा उनका प्रतिनिधित्व हो सकता है.
So how do we know about the form of the Lord?
तो भगवान का रूप विग्रह कैसा है ये कैसे जाने.
So of course, if we follow scripture, the Vedic scriptures will tell us you cannot know on your own, not by your intelligence, not by your vision, not by your sight.
तो शास्त्रों के अनुसार भगवान का इस प्रकार का अनुग्रह करना ये संभव नहीं है हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा.
So the only way we know is through the scripture.
एक ही तरीका है वो है शास्त्रों के द्वारा पढ़ना.
Of course, people will say, well, I won't accept the Vedas, I'll go to the Bible, I'll go to the Quran, I'll go to some other scripture. People can say that.
तो कोई ये कह सकता है कि मैं वेदों को क्यों सिखा रहा हूँ, मैं तो किसी और शास्त्र को सिखा रहा हूँ, जैसे बाइबल में पढ़ा रहा
हूँ. Fine, you go to that scripture, but at least if you go to the scripture, you accept what the scripture says.
तो ये ठीक है कि तुम किसी शास्त्र को अपनाते हो, अगर अपनाते हो तो कुछ तो तुम शास्त्रीय अपनाओगे.
So first, all these scriptures will say, yes, there is a supreme person. Definitely somebody is there.
तो पहली बार तो शास्त्र में ये लिखा है कि एक भगवान जरूर है. अब वो कौन है ये जानना जरूरी है.
So of course we have different names, Allah, God, Jehovah, Krishna, whatever. Names are different.
तो भगवान के कई नाम हैं जैसे अल्लाह, जेहोवा, कृष्णा.
But who is that supreme entity?
परंतु वो परम पुरुषोत्तम कौन है.
So if we look in the various scriptures, we'll find some descriptions.
तो अगर अलग अलग शास्त्रों को हम पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि कुछ न कुछ वर्णन अवश्य दिया गया है.
However, if we look very carefully, we'll see surprisingly most scriptures, like the Bible and the Quran, do not describe God in great detail.
परंतु अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये जानकारी हमें मिलेगी कि अन्य शास्त्रों में जैसे बाइबल, कुरान आदि में भगवान की बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं दिया गया.
So they will describe God as very great, all-powerful, controller, knows everything.
तो उनके शास्त्रों में ज्यादा से ज्यादा ये बताया गया है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, बहुत महान है.
So nobody has any quarrel with that. Everybody believes in God.
और कोई भी ये समझ नहीं पाता है कि वास्तव में भगवान कौन है, वो कुछ वही समझते हैं.
So we'll have the same descriptions in the Upanishads, the Vedas, the Purans.
और उपनिषद, वेदों में, पुराणों में भी इस प्रकार का वर्णन दिया गया है.
Now comes a more difficult question. Does God have a form? Does God have a color? Does God have activities?
तो महत्व की बात समझना ये है कि भगवान का क्या कोई रूप है, क्या उनका कोई रंग है, क्या उनकी कोई लीलाएं हैं.
And this is where we have a big problem, because in the Bible not much is described. Yes, he has some qualities, but form or no form, not quite mentioned. Quran, no form at all, definitely. And, of course, in the Vedic literature, yes, he does have form, he has color, he has qualities, he has activities, many things described.
So, in society, this is why people's minds are so divided, because in their religions, there is no form. जबकि वेदों में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान का रूप है उनकी लीलाएं हैं उनका रंग है
सो व्हाटएवर इज इन द बाइबल एंड द कुरान आल्सो इन द वेदस
तो समझना यह आवश्यक है कि बाइबल कुरान में जो जो भी ज्ञान दिया गया है वो वेदों में भी है
बट वेदिक स्क्रिप्चर हैज मोर
परंतु वेदों में उससे अधिक ज्ञान है
सो द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द वेदिक स्क्रिप्चर्स इज एक्चुअली इट सेज बोथ थिंग्स यस गॉड हैज नो फॉर्म नो क्वालिटीज नो एक्टिविटीज नो एनीथिंग दैट्स ऑल And the same time, he does have form, he has qualities, activities, both.
So, Bhagwan ke vishay mein jo Vedon mein bataya gaya hai, wo dono baatein hain ki Bhagwan nirvishesh bhi hain aur saath saath unka ek sundar roop bhi hai.
So, we can conclude that the Vedic literatures have more details about God than any other scriptures in the world.
तो अंततः समझना ये आवश्यक है कि वेदों में बहुत ही गहरा ज्ञान और वर्णन दिया गया है.
So, if we follow the Vedic scriptures because they are complete, then we have to come to the full conclusion. Who is that God? What are his qualities, etc.
और अगर कोई वेदों को मानता है, तो उसको संपूर्ण रूप से ये भी मानना चाहिए कि वेदों के अंत में भगवान का वर्णन किसके बारे में बताया है।
So there is a clear definition of who is God and who is not God.
तो ये स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि भगवान कौन है और भगवान कौन नहीं है।
One of the qualities is God has an eternal form of body.
तो एक गुण भगवान का ये है कि उनका एक साक्षात रूप है, उनका एक शरीर है।
And persons that don't have an eternal body are not God.
और जो जिनके पास शाश्वत शरीर नहीं है, वो नहीं भगवान नहीं।
So therefore, someone who is subject to birth and death cannot be called God and is not worthy of worship.
तो जो इस भौतिक संसार के चक्र में फंसा हुआ है, वो भगवान नहीं माना जा सकता।
So naturally, we have to discard all the movie stars and the rock singers. They're not God because they have a birth and death. They get old, they get sick.
So, अगर ये परिभाषा ली जाए तो जितने भी आम भौतिक समाज के लोग हैं, जैसे कि कलाकार आदि, वो सब इस श्रेणी में नहीं आ सकते.
So higher up, we do have devatas, but devatas are also subject to death.
तो इनसे ऊपर जो देवी देवता हैं, वो भी भौतिक संसार के इस बंधन से मुक्त नहीं
है। We have many devatas mentioned in the Vedic literature, up to and the top devata is Brahma.
तो सारे देवी देवताओं को लेकर यहाँ तक कि ब्रह्मा को भी मिलाकर,
they're all subject to birth and death. They all have material bodies. Therefore, they're not God.
वो सभी जन्म मृत्यु से बंधे हुए हैं। वो भगवान नहीं हो सकते।
Of course, the Vedic literature say, okay, worship Indra, worship Brahma, worship this devata, that devata, fine, but not as supreme lord.
तो शास्त्रों में यह अवश्य कहा गया है कि देवी देवताओं की भी पूजा आराधना होनी चाहिए परंतु ऐसे नहीं जैसे हम परम पूज्य भगवान की करते हैं।
One can worship these entities, devatas, if you want material benedictions, but keeps you in the material world.
तो जिन व्यक्तियों को जिन लोगों को भौतिक लाभ इच्छाओं में बहुत रुचि है वो देवी देवताओं की आराधना कर सकते हैं।
So the worship of God is especially meant for spiritual development that the devatas will not give you.
तो विशेष बात यह है कि भगवान की पूजा सिर्फ आध्यात्मिक विकास के लिए करनी चाहिए जो देवी देवताओं के लिए संभव नहीं।
So therefore, those forms who have spiritual bodies, eternal bodies, those are the forms of Vishnu and Rama, Krishna, Narasimha, etc. These are the forms of God.
तो राम, विष्णु, नरसिम्हा आदि जो भगवान के नाम अभी महाराज ने बताए, केवल यही भगवान के पद को स्वीकारे जा सकते हैं।
So this does not mean there are many gods. No, there is one God, but he has many forms.
और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बहुत अलग-अलग तरह के भगवान, भगवान एक ही हैं, उनके अलग-अलग नाम हैं।
So sometimes people, Christians will say, oh, Hindus worship many gods.
और बाकी के धर्म के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को इसलिए भी नहीं स्वीकारते क्योंकि यहाँ बहुत सारे भगवान मानते हैं।
Well, yes, many people do. They worship this devata, that devata, this devata. Yeah, they worship many. But the Vaishnava worships one God.
तो ये सच है कि हमारे देश में अन्य बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की पूजाएं आराधना करते हैं परंतु जो वैष्णव है वो सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं।
The others are not God.
वो जानते हैं कि बाकी भगवान नहीं।
So there is one God, one supreme Lord, but he has many forms.
तो एक भगवान है, परंतु उनके रूप अनेक हैं।
So one can worship any of these forms.
और इनमें से किसी भी रूप को हम स्वीकार करके पूजा कर सकते हैं।
But there is a authorized method of creating the form and then installing the form and worshiping the form.
और उनकी पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, उन्हें कैसे आमंत्रित करना चाहिए, ये सारा ज्ञान शास्त्रों में दिया गया है।
Now, of course, of all the forms, the Gaudiya Sampradaya particularly points out Krishna is the complete manifestation of all qualities in God. So therefore, he is the ultimate, highest form.
और भगवान के सभी रूपों में हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने समझाया है कि जो कृष्ण रूप है वही सर्वोत्तम, सर्व आकर्षक और परिपूर्ण है।
So people will say, why you only worship Krishna? You worship Krishna because this is the advice of Vedavyas and the Bhagavata.
तो अगर कोई हमें पूछे कि हम कृष्ण की पूजा ही क्यों करते हैं, तो उत्तर ये होना चाहिए क्योंकि आचार्य वेद व्यास और ऐसे महान संतों ने ये ज्ञान हमें दिया।
In the first canto of Bhagavatam, Narada Muni chastised Ved Vyas for telling people to worship different forms like Shiva or Brahma or Vishnu, etc. He says, in Kali Yuga, just tell everyone to worship Krishna.
तो श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है कि कैसे नारद मुनि ने वेद व्यास को डांटा था कि आपने अलग अलग रूपों की पूजा करने का ज्ञान क्यों बताया, इस कलयुग में सिर्फ एक ही पूजा बताइए भगवान कृष्ण की।
So therefore in our temples we usually install the form of Krishna.
और इसीलिए हमारे इस्कॉन के मंदिरों में हम कृष्ण का रूप ही मानते हैं।
And of course Krishna also has many forms.
और कृष्ण के भी कई रूप हैं।
He has baby form, he has middle offender form, he has Kaishor form.
तो कृष्ण के बाल रूप हैं, उनके कुमार रूप हैं, पौगंड रूप हैं।
He also has Dwarka form, Mathura form, and Raja form.
और उनके द्वारका का रूप है, उनका मथुरा का रूप है, ब्रज का रूप है।
And in these different forms, he expresses different relationships with different devotees.
और इन अलग-अलग रूपों में वो अलग-अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ।
So of all the different relationships, Chaitanya Mahaprabhu has pointed out, and of course, Sukadeva Goswami in the Bhagavatam also, that the ultimate relationship is the relationship of Krishna with the gopis. It's the highest.
शुभदेव गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपनी शिक्षाओं में ये वर्णन किया है कि भगवान के सभी रूपों में सबसे उत्तम और सबसे चरम कोटि का रूप है और उनकी जो लीलाएं हैं वो है भगवान की उनकी गोपियों के साथ।
So this is called Madhurya Rasa.
और इसे मधुर्य रस कहा।
This is the sweetest, it is also the purest, it is also the highest relationship with God.
ये सबसे मधुर और सबसे उत्तम और सबसे परिपूर्ण सबसे ऊंचा रस है।
Now, in that Madhurya Rasa, there are countless millions, millions, trillions of devotees, gopis.
तो वर्णन यह है कि इस मधुर रस में भगवान के साथ कोटि कोटि गोपियां हैं।
And of all of them, the supreme gopi is Radha.
और इन कोटि कोटि गोपियों में से सर्वोत्तम है, सबसे महान है श्रीमती राधा।
So therefore, in our temples, we have Radha and Krishna.
और इसीलिए कृष्ण के साथ सदैव राधा रानी होती है।
So of course, Radha is not alone. She has a big group.
और राधा रानी भी अकेली नहीं होती, उनकी भी उनका भी एक ग्रुप है।
And in her group, everyone is also very, very elevated.
और उनके समूह में भी बहुत सारे महान भक्त हैं उनके साथ।
And in her group, we have Lalita and Vishakha. They're considered the highest in that group.
राधा रानी की जो सखियां हैं उनके सब उनका जो संघ है उनके सबसे श्रेष्ठतम है ललिता और विशाखा।
So within prema it is described there are various levels of prema up to Mahabhava.
तो प्रेम के जो अलग अलग स्तर बताए हैं उसमें से सबसे ऊपर है महाभाव।
So the different devotees like the servants or the friends or even the parents and Vatsalya Rasa, they go up to a certain level up to Raga.
ये वर्णन आता है कि जो बाकी के रस में जो भक्त हैं, जो भगवान के सखा हैं या भगवान के जो पिता हैं, जो उनकी वो सब केवल राग के स्तर तक पहुंच
रहे हैं
और जो माधुर्य रस में थोड़े ऊपर हैं वो अनुराग तक पहुंच रहे
हैं।
परंतु ये जो महाभाव का रस है इसका अनुभव केवल राधा रानी कलिता देवी और विशाखा देवी नहीं कर सकते.
So therefore they are very very elevated
devotees. इसीलिए ये बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम भक्त हैं.
So what does that mean to us?
तो हमें इसे क्या समझना चाहिए?
This represents the highest type of bliss.
ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आनंद के बारे में बताया है.
So everybody wants happiness. Sure.
इस संसार में सभी लोग आनंद खोज रहे हैं.
Who likes to suffer? Anybody?
किसी को दुख चाहिए.
Who likes to get sick?
किसी को बीमार होना है.
Who likes to get auto accidents?
किसी को किसी कार एक्सीडेंट में मरना है.
Who likes to have a lot of worries?
कौन चिंताएं चाहता है अपने जीवन में?
Nobody wants worries or stuff. Everybody wants happiness.
तो किसी को भी दुख क्लेश नहीं चाहिए, सभी को आनंद चाहिए.
It is also the nature of the jiva himself to get happiness.
तो ये जीव का एक स्वाभाविक तरीका है जिसे आनंद चाहता है.
The nature of the jiva, one of the natures is he is a bhokta, which means he can experience it.
और जीव का एक और स्वभाव है कि वो भोगता है, यानी वो हर चीज को भोगना चाहता है.
So all the jivas in the material world and in the spiritual world by nature have the ability to experience.
तो ये वास्तव में जीव का स्वरूप है, चाहे वो इस संसार में हो या आध्यात्मिक संसार में.
And what do they like to experience?
और वो क्या अनुभव करना चाहते हैं?
Certainly not suffering.
दुख नहीं.
They like to experience bliss.
वो केवल आनंद का अनुभव करना चाहते हैं.
So all the jivas in the material world are looking for bliss.
तो भौतिक संसार के भी सारे लोग आनंद ही ढूंढ रहे हैं.
But they're doing it in ignorance.
परंतु वो अज्ञान के द्वारा ढूंढ रहे हैं.
So the true experience of bliss exists for the jiva, but in the spiritual world.
तो आनंद का वास्तविक स्वरूप केवल आध्यात्मिक संसार में ही अनुभव किया जा सकता है.
And not that, of course, that bliss exists in a relationship with Krishna.
और ये आनंद केवल भगवान कृष्ण से संबंधित रहकर ही अनुभव कर सकते हैं.
In the material world, we try to get bliss by getting things for ourselves.
भौतिक संसार में लोग अपने भोग विलास के लिए चीजें इकट्ठा करते हैं और आनंद ढूंढते हैं.
This leads us to karma, ignorance, suffering.
और इससे हम और कर्म उग्र कर्म करते हैं और फिर अलग अनेक प्रकार की तकलीफें भोगते हैं.
The process of bhakti is, let me not get enjoyment for myself, let me give enjoyment to Krishna.
और भक्ति का जो तरीका है कि वो मैं अपने भोग की चिंता नहीं करता, मैं कृष्ण के भोग की चिंता करता हूँ.
Then we get our bliss.
और इस तरह से मैं खुद भी आनंदित हो जाता.
So that highest bliss of serving Krishna and then consequently getting happiness is in madhurya rasa.
तो ये जो माधुर्य रस है, इसका यही रहस्य है कि कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लीन हो जाना और फिर इस तरह से हम स्वयं आनंदित.
And the greatest example of full service to the Lord and consequently getting the greatest bliss is Radha Rani.
और श्रीमती राधा रानी इस तत्व का सबसे बड़ा उदाहरण है जो कृष्ण की सेवा में हमेशा रहती है.
So Chaitanya Mahaprabhu is very merciful to the people of the material world.
और श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार के लोगों पर बड़े ही कृपालु हैं.
And he says, let us give all the unqualified rascals of Kali Yuga and Aparadis, etc. Mercy so they can realize the highest bliss in Madhurya Rasa.
चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में कलयुग के सब सब सबसे पापी और अधम जीवों को भी उस माधुर्य रस का परम आनंद देना चाहते हैं.
Through Sunam Sankirtan, he allows unqualified jivas of Kali Yuga to realize the love of Radha.
श्री हरि नाम संकीर्तन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के सभी बद्ध जीवों को वो परम आनंद जो अभी वर्णन किया है उसके उसका अनुभव कराना चाहते हैं.
Okay, so therefore we have Radha Krishna in our temple to give people that great bliss.
और इसीलिए हमारे मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियां होती हैं ताकि संसार को यह आनंद बांटा जा सके.
So we have Radha Krishna in the holy name, Hare Krishna, definitely.
तो हमारे पास राधा कृष्ण और उनका पवित्र नाम है हरे कृष्ण.
So this is the Yuga Dharma, that's our main sadhana.
और ये युग धर्म ही हमारी मुख्य साधना है.
However, unfortunately, when you chant Hare Krishna, then our mind goes off and we're thinking also of other things.
किंतु दुर्भाग्यवश जब भी हम हरे कृष्ण का जप करने बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर दौड़ता है.
So the whole purpose of all of these methods of bhakti is to remember the Supreme Lord.
तो भक्ति की जो जितने भी रहस्य बताए गए हैं उसका अंततः सार यही है कि भगवान का स्मरण करना.
So the form of the deity allows us chance to understand that Hare Krishna means Radha and Krishna, the deity forms.
तो भगवान का विग्रह जो है वो हमें इस बात की सुविधा करता है कि जब हम हरे कृष्णा बोलें तो हम भगवान के इस सुंदर रूप का स्मरण कर सकें
and the deity forms also allow us opportunity for service.
और साथ साथ विग्रह हमें अनेकों प्रकार की सेवाओं में भी लगाते हैं.
So deity worship is not the yuga dharma. Harinam is the yuga dharma, but the worship of the deity, saying the deity, etc., helps us also develop our mood of sankirtan.
तो हालांकि अर्ष विग्रह सेवा करना ये इस कलयुग का धर्म नहीं है. हरिनाम संकीर्तन कलयुग का धर्म है, परंतु अर्ष विग्रह की सेवा करने से हरिनाम करने में हमें और भी प्रेरणा मिलती है.
So, we have these forms, and these forms we consider non-different from the Supreme Lord.
तो भगवान के जितने भी रूप हैं वो समझना चाहिए कि भगवान से साक्षात अभिन्न है.
As I said, the Supreme Lord doesn't have a material body.
तो जैसा कि मैंने बताया कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं
है. But then, doubters or critics or other people say, oh, these are idols because their material forms are made out of stone or made out of wood, etc. How can they be God?
और इसलिए जो नास्तिक लोग हैं जिन्हें विश्वास नहीं है वो ये समझते हैं कि भगवान अगर पत्थर में है तो ये भगवान कैसे हो सकते.
So to answer that, we say that, yes, you have some stone or marble or metal or wood. However, there's also a transformation by the mercy of the Supreme Lord.
तो उन्हें समझाने के लिए ये कह सकते हैं कि हालांकि हम पत्थर और लकड़ी आदि से बने हुए मूर्तियों को पूजते हैं, लेकिन उनको पूजने के लिए भी एक बहुत ही विशेष तरीका है.
So the whole process starts with the making of the forms. Somebody has to make the form of the deity.
और ये सारा कार्यक्रम तब शुरू होता है जब पहले कोई एक विशेष व्यक्ति भगवान की इस मूर्ति का निर्माण करता है.
So we have the silky shastras. These shastras define the proportions of the different forms of the Lord.
और इनका निर्माण भी कोई आम इंसान नहीं करता. कुछ ऐसे शिल्प शास्त्री हैं जो ठीक ढंग से पढ़कर ही इसका निर्माण करते हैं.
So we can't make a new form of Krishna with 20 arms or 5 heads. We can only follow what's in the scriptures.
तो मनगढ़ंत तरीके से कोई भगवान की रचना नहीं कर सकता कि जिसके ऊपर 20 हाथ हों या 5-10 सर हों.
There are also certain materials that can be used.
और कौन से तत्व यूज किए जाएंगे, कौन से तत्व का उपयोग किया जाएगा, ये भी पूर्ण निर्धारित होता है.
So the Srimad Bhagavatam mentions metal, wood, stone, clay, gems, sand, paint, or even mental deity.
तो भागवत शास्त्र के अनुसार धातु, पत्थर, और रेत, इन सब तत्वों से ही बनाए जा सकते हैं मूर्तियों.
So metal deities are very common. We usually have these forms of metal, panchadhatu, rastadhatu, brass deities or copper deities, whatever, they're quite common.
तो ये तो हम सब जानते हैं कि अनेक प्रकार की धातुओं की, पंच धातुओं की, कांस की, सिल्वर की, चांदी की, सुवर्ण की, अनेक प्रकार की इन धातुओं की मूर्तियां बनती हैं.
So we have wood forms. Famous wood form is Jagannath in Puri.
और इसी प्रकार से लकड़ी से भी भगवान का विग्रह बनता है, जैसा हम सब जानते हैं पुरी के जगन्नाथ जी लकड़ी के बने हैं.
So one problem of wood forms is they may be subject to decay more quickly than metal forms, so they have to be changed more often.
और क्योंकि लकड़ी का जो रूप है वो समय के अनुसार अधिक नहीं टिक पाता, इसलिए उन्हें बदलते रहना पड़ता है.
And then we have stone forms such as marble.
और फिर पत्थर का भी एक रूप है जैसे मार्बल के द्वारा बनाए जाते हैं.
So these are quite common, especially for larger forms.
और खास करके जब बड़े विग्रह बनाते हैं तो ये संगमरमर पत्थर का उपयोग किया जाता है.
We can also make forms out of paintings, and we can also worship those as deities if we install them properly.
और चित्रकारी करके, पेंट करके भी हम भगवान का रूप बना सकते हैं.
So sometimes devotees especially think that first they start with a small little temple and they have a picture there and then they aspire, well, we're going to have deities.
इसीलिए कई बार जब नए नए भक्त बनते हैं तो लोग अपने घरों में सिर्फ एक तस्वीर की या पिक्चर की पूजा करते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद वो मूर्ति ले
आते हैं.
कई मंदिरों में भी जब भगवान के विग्रह को लाने की जब बात होती है तो कई बार ये चर्चा होती है कि क्या हम विग्रह सेवा कर सकते हैं, क्या हमारे पास पर्याप्त लोग हैं.
But actually, even the pitcher, you can also worship as a deity.
परंतु सच बात तो यह है कि भगवान की तस्वीर को भी हम उसी प्रकार से सेवा कर सकते हैं।
If you install them properly, worship properly is also non-different from the Supreme
Lord. भगवान का जो चित्र है, ये भी भगवान से अभिन्न है।
And one advantage is you don't have to go through a whole bathing ceremony, decorating ceremony, all this every day. You can just do the offerings.
तो अंतर केवल इतना है कि जैसे साक्षात जब विग्रह की सेवा करते हैं तो बहुत सारी सामग्री का अनुभव करना पड़ता है, वो सब यहाँ नहीं करना पड़ेगा।
Other forms like sand and lacquer were also mentioned. They're very impermanent, so usually in clay forms, usually they temporarily install them and then they discharge them afterwards, as we see with the Ganesh. Putty forms, they put them up for a few days and throw them away.
तो अलग अलग तरीकों के जो विग्रह होते हैं जैसे रेत आदि से बनाए हुए उनकी भी पूजा होगी और उनको कुछ दिनों के लिए लाते हैं और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं गणेश उत्सव में यही होता है कि भगवान की लाकर उनका विसर्जन करते हैं।
We also have natural forms, of course, sometimes we have natural deities that manifest, the more common forms are the shalagrams.
तो कई ऐसे प्राकृतिक भगवान के रूप भी हैं जैसे शालिग्राम शिला।
So these forms are considered to be non-different from the Lord and they don't even require an installation.
तो शालिग्राम शिला के विषय में ये बताया गया है कि इन्हें किसी प्रकार की आमंत्रित करने वाली इंस्टॉलेशन पूजा भी नहीं करनी पड़ती, जैसे ही वो आपको मिले आप उनकी पूजा कर
सकते।
कभी कभी ऐसी चमत्कारी घटनाएं भी होती हैं, जैसे वृंदावन में राधा रमन मंदिर है तो ये जो राधा रमन जी है ये एक शालिग्राम में से
The shastras, Jyoti shastras, describe how to make the deity, etc. And then we have the craftsmen. They also have particular rules for choosing the stone and then carving.
तो शास्त्रों में सारा वर्णन है कि अर्चक विग्रह की कैसे स्थापना करनी चाहिए और शिल्प शास्त्री जो होते हैं वो सारा ये ज्ञान जानते हैं कि उसे कैसे बनानी चाहिए।
So once we have the completed form of the deity, it is still not considered archivigraha.
So एक बार ये मूर्ति बन जाए, तब भी वो कोई तरह से अभी अर्चविग्रह नहीं मानी जा सकती।
So we have a ceremony called pratishtha karma, activities of establishing the deity.
तो सबसे पहले प्रतिष्ठ कर्म नाम की इस उपचार को करना पड़ता है।
Of course, pratishtha has a bad meaning also.
प्रतिष्ठा का इस संसार में एक दूसरा अर्थ भी है।
It's considered a bad quality when people long to get a high position.
जब किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा बनने की या किसी पद को प्राप्त करने की इच्छा होती है उसे कहते हैं प्रतिष्ठा की भोग करने।
But when we call pratishtha karma, it means we are establishing the form of the deity in its natural position.
परंतु विग्रह के संबंध में जब हम प्रतिष्ठ कर्म बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम साक्षात उस भगवान को उसमें आमंत्रित करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।
So this is the ceremony which transforms the material like stone or wood or metal into spiritual form.
तो ये जो प्रतिष्ठ कर्म संस्कार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे वो जो धातु की जो मूर्ति बनी है वो अब पूरी तरह से शाश्वत बन गई।
So if we don't carry out this ceremony and we're simply worshiping the deity, technically, according to Pancharatra, this is stone, this is metal, this is material.
तो अगर ये विधि न की जाए तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में हम किसी पत्थर की या किसी धातु की भी पूजा कर रहे हैं।
So there are different steps in the establishing of the deity for the Pratishtha.
और इस पूरे कार्यक्रम में भी अलग अलग स्तर बताए गए हैं।
So we have preliminary things for purification.
So swayam pehle swayam shuddhi ke kuch kriyaen batayi gayi hain.
Everything in the material world is impure.
Bhautik sansar mein sab kuch ashuddh hai.
The only pure thing in this material world is the jiva. He's spiritual. Everything else is material.
तो जीव स्वयं आत्मा जो है वो ही एक शुद्ध तत्व है, बाकी सब कुछ अशुद्ध है।
So of course in the material world some things are considered better than others. So sattvic things are better than tamasic or rajasic things.
तो भौतिक संसार में अगर हम तुलना करने जाएं तो कुछ चीजें दूसरी चीजों से बेहतर है, जैसे सात्विक वस्तुएं तामसिक वस्तुओं से बेहतर होती हैं।
So So, of course, the jiva is pure by nature, it's spiritual, but unfortunately, all the jivas are also covered by ignorance.
तो हालांकि जीवात्मा वैसे तो शुद्ध है परंतु अज्ञानवश वो भी अशुद्ध बन जाते हैं।
So how is it possible for a contaminated jiva with a material body to even approach the Supreme Lord or do anything spiritual?
तो ये संभव ही कैसे है कि इस भौतिक संसार में अज्ञान के द्वारा ढके हुए जीव परम पुरुषोत्तम भगवान को उनकी पूजा में लग सके?
So it's not possible. So, qualification actually is first you have to be a Vaishnava.
तो पहला सबसे बड़ा गुण है कि उसे वैष्णव बनना पड़ेगा.
That means the jiva has changed. He's no longer impure.
तो इसका मतलब कि वो जीव अशुद्ध जीव नहीं है.
The jiva has chosen the Supreme Lord over his own enjoyments.
और वैष्णव वो है जिसने स्वयं के भोग के ऊपर भगवान के आनंद को भगवान के भोग को समझा.
So, of course, most of the jivas are not at the highest level, right? They're at a level of from 1% maybe to 80%, 90% of purification and bhakti.
तो ये अवश्य कह सकते हैं कि जो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं वो भी ऐसे नहीं है कि वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो गए हैं. कुछ बहुत नीचे स्तर पे हैं, कुछ बहुत ऊपर स्तर पे हैं.
However, the Lord is very merciful, and at a certain level, he says, "Okay, you are Vaishnava. You are qualified."
किंतु भगवान बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं, और वो थोड़ी बहुत प्रगति देखकर भी ये कह देते कि हाँ अब तुम वैष्णव हो.
So according to Pancharatra, that particular step means when you get your deity mantras, what we call our second initiation, then you are qualified as Vaishnava.
पंचरात्र की विधि के अनुसार जब ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है तब वो इस प्रकार के विग्रह पूजा करने के लिए उपयोग.
Of course, we do have another exception, and that is Nama. The Hari Nama itself is purified. So anybody who chants Hare Krishna once also is a Vaishnava according to Vaishnava.
But Chaitanya Mahaprabhu ke anusar, agar koi vyakti ne Hari Nama diksha bhi le li ho, to wo bhi Bhagwan ki seva karne ke liye yogi hai.
However, as far as deity worship is concerned, we have to follow Pancharatra Vidhi. So therefore, those people who are qualified to actually carry out the ceremonies of Pratishtha, those are the initiated Vaishnavas.
किंतु पंचरात्रिका के अनुसार जो इस प्रतिष्ठा के संस्कार को कर सकते हैं वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली है.
So technically then that Vaishnava is initiated, he is pure soul. Is it pure enough?
तो ये मान लेना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस क्रिया में लगे हुए हैं, इस प्रतिष्ठा के संस्कार में लगे हुए हैं, वो बहुत ही शुद्ध व्यक्ति.
However, we still have material body.
परंतु साथ साथ ये भी ध्यान में रहे कि हम इस भौतिक शरीर में बद्ध हैं.
So therefore we have to purify the body in various ways. So we have bathing, doing achaman, doing japa, the steps that also purify the body.
तो इस अवस्था को भी शुद्ध करना आवश्यक है, जैसे सुबह उठकर नहाना, फिर जप करना, इस प्रकार से.
It's actually said that even if you are doing deity worship and followed by all those mantras, you can never forget to chant the name of the Lord. You have to keep chanting the name of the Lord. That's our main purification and the best of one. So that's always the main thing.
तो भक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि अगर कितने भी हम मंत्रोच्चार करें लेकिन साथ साथ भगवान का नाम लेना भी उतना ही जरूरी है और ये हमें कभी नहीं भूलना है.
And of course, when we say Vaishnav, he is initiated Vaishnav or is sincere Vaishnav. What we mean actually is the jiva has made a decision to accept the shelter of the Lord. That is the real Vaishnav. So he has devotion, not completely, but to a certain level that the Lord accepts him.
तो एक दीक्षित भक्त या एक सच्चे वैष्णव का अर्थ मतलब यही है कि ऐसा व्यक्ति जिसने संपूर्ण रूप से ये निर्णय कर लिया है कि उसका सर्वस्व जीवन भगवान की सेवा के लिए है.
So in the actual first we have to qualify Vaishnavas to do the ceremony and then we have to purify the place, the space.
तो दूसरा कार्य ये है, पहले तो हमने देखा कि वैष्णवों को स्वरूप शुद्धि करना है और दूसरा है कि वो स्थान की शुद्धि करना है जहाँ पर वो कार्य होगा.
So according to the Vedas, of course, we have what are called tics or directions.
तो शास्त्रों के अनुसार दिशाओं के बारे में भी बड़ा ज्ञान दिया है.
and there's a devata also avatar in charge of each direction.
और हर दिशा का एक विशेष देवता भी है.
So we have to worship all the directions and make all the directions peaceful. That means our space becomes spiritual.
तो स्थान की शुद्धि इसी प्रकार से की जाती है कि जो अलग अलग दिशाएं हैं उनके देवताओं की हम पूजा अर्चना करते हैं.
So these are some preliminary words to the puja, Midrubhasta Homa, purify the whole area.
तो इस प्रकार से दिशा पूजा और वास्तु होम करके इस संस्कार का आरंभ किया जाता है.
So it is said that the whole space is occupied by this Vastu Purusha.
तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो संपूर्ण स्थान है ये इस वास्तु पुरुष के द्वारा ले लिया गया है.
And each part of this body is represented by a different devata.
और इस वास्तु पुरुष का इसके शरीर का हर अंग एक विशेष देवी देवताओं के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है.
So they do Vastu Homa to pacify all of these different deities and make the whole place pure.
तो वास्तु होम का उद्देश्य ये है कि जितने भी ये देवी देवता हैं उन्हें पहले प्रसन्न करना.
So of course we can simplify this by using the avatars who are in charge of the different directions.
और इसे सरल ढंग से करने का तरीका ये है कि जो अलग अलग दिशाओं के जो अवतार हैं उनकी पूजा करना.
So in the northern direction we have the planet Mercury in charge and Buddha.
तो उत्तर की दिशा में बुध है उनका उनकी पूजा करते हैं.
In the northeast, Jupiter is the planet in charge and the deity is Amarnath.
तो उत्तर पूर्व के अंदर है वामन देव की पूजा करते हैं.
Eastern is ruled by the sun and the deity is Ramchandra from the Surya dynasty.
तो पूर्व के अंदर है श्री रामचंद्र.
And in the southeast, we have the ruling planet is Venus, Shukra, and the deity is Parasuram.
और जो दक्षिण पूर्व की दिशा में है, वो है भगवान परशुराम.
And the southern planet is Mars or Mongol, and the deity is Ashvamedha, fiery.
और दक्षिण की दिशा है नरसिंहदेव.
And the southwest is ruled by Rahu, rather inauspicious dark planet, and the deity is Varaha.
तो वराह देव जो है वह है दक्षिण पश्चिम की ओर.
West is ruled by Shani, Saturn, and the deity is Kurma.
और पश्चिम की ओर जो है शनि है वो है कुर्म देव.
Northwest is ruled by the moon and Krishna, the Chandra dynasty.
और पूर्व उत्तर की तरफ जो है वह है भगवान कृष्ण स्वयं.
So this way we instead of worshiping devatas we will worship forms of the spirit.
तो इस प्रकार से ये विभिन्न जो अवतार हैं उनकी अर्चना करके हम ये शुद्धि करते हैं.
Time, there is what is called purity of time. This is represented of course in the Vedas by the Jyotish. Jyotish is one of the elements, the angas of the Vedas.
तो समय शुद्धि भी कभी आवश्यक है और ये ज्योतिष के अनुसार ये ज्ञान बताया गया है समय शुद्धि कैसे की जाती है.
Vedic ceremonies must be conducted at the proper time, not the improper time.
तो हर वैदिक संस्कार का एक सही मुहूर्त होता है और उस मुहूर्त पर ही उसे करना आवश्यक है.
So some tithis are considered bad and some are considered good.
तो कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो शुभ हैं, कुछ हैं जो अशुभ हैं.
And the usually the waning paksha, the moon, the dark phase not good, and the waxing phase, the gora paksha or shukla paksha is considered good.
तो जो शुक्ल पक्ष है उसे शुभ माना गया है, शुक्ल पक्ष है उसे अशुभ माना गया है.
And certain nakshatras are considered good and certain ones are considered bad.
कई ऐसे नक्षत्र हैं जो शुभ हैं, कई ऐसे नक्षत्र हैं जो अशुभ हैं.
So we have to consider many things, but these are the primary things, the tithi and the day of the week also is considered important.
तो इस प्रकार से समय दिन आदि ये सब का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है.
Different planets rule the different days.
तो अलग अलग जो नक्षत्र हैं वो अलग अलग दिनों का उनका अधिकार होता है.
So Mars and Saturn are considered very bad planets.
मंगल और जो शनि हैं, उन्हें बड़ा अशुभ माना गया है.
Therefore we have Tuesdays and Saturdays, so they're not good.
तो मंगलवार को और शनिवार को हम इस प्रकार की कोई भी क्रियाएं नहीं करते.
So we have to consider many things, but the day of the week, Titi and the nakshatra and the phase of the moon, these are things we have.
तो इस प्रकार से समय शुद्धि करने के लिए इन सारी बातों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है.
So by choosing the proper time, and then that means we have pure time for the ceremony.
तो इस प्रकार से जब हम सही मुहूर्त चुन लेते हैं तो ये कार्यक्रम बड़ी सुंदर ढंग से किया जा सकता है.
We have a ceremony called Netral Annealing, or opening the eyes of the deity.
इसमें एक संस्कार का नाम है नेत्रोन्मीलन, जिसमें भगवान की जो नयन है उनको खोला जाता है.
So of course the deity has senses just like we have senses.
So ये समझना जरूरी है कि जैसे हमारी इंद्रियाएं हैं, हमारे आंखें हैं, कान है, नाक है, वैसे ही अक्षर ग्रहते भी हैं.
So we energize those senses like the eyes by the ceremony called Netral Milan.
So इस जो नेत्रोन्मीलन संस्कार के द्वारा हम इन सारी इंद्रियों को जागृत कर देते हैं.
घी और हनी आर यूज्ड टू टच द आईज यूजिंग अ गोल्ड स्टिक.
और शहद, घी, सुवर्ण, इन सब तत्वों से हम इनको करते हैं.
सो इन आयुर्वेदा ऑफ कोर्स घी और हनी आर वेरी नूरिशिंग.
और आयुर्वेद के अनुसार भी जो घी है और शहद है इसको बहुत ही अच्छा बताया गया है.
Last night we had the ceremony of the Adivas where different articles were shown to the deity.
और अंत में इस कार्यक्रम का समापन होता है आदिवास के संस्कार से.
So according to the Vedas, certain things have auspiciousness to attach to them.
तो शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे कोई भी संस्कार पूरी तरह से शुभ बन जाता है.
And so to show these things to a person brings about auspiciousness for the person.
जब इन वस्तुओं को हम सामने लाते हैं तो वो व्यक्ति और वो सारे संस्कार, वो समय, सब कुछ बहुत ही पवित्र हो जाते हैं.
So therefore we have flowers, generally flowers, especially fragrant flowers or white flowers, considered very auspicious.
तो पहली है सुगंधित पुष्प होना जरूरी है.
Conch shell is very auspicious.
शंख.
Gold is auspicious.
सुवर्ण.
Gems are auspicious.
और कुछ ऐसे विशेष जो पत्थर हैं.
Rubber grass
भी बहुत ही शुभ है.
तुलसी
के पत्ते.
Muir is considered auspicious.
आईना. दर्पण.
Stone like the Shaligram Shila is auspicious.
Shaligram Shila भी बहुत ही शुभ होती है.
Chamara is auspicious.
Chamara दिखाना.
Probably mainly because chamara is usually used for a king, so to show that it means power like a king. And of course, turmeric, haldi, sindoor, yes, very auspicious elements, very purifying. Lamps are always considered auspicious.
Deep khana chahiye.
Sandalwood is auspicious.
Chandan.
Copper is auspicious.
Hans.
And gandha, different scents are auspicious.
Aur ke itar
vagaira. And so all of these things are shown to the deity and then his blessings.
तो आदिवास में ये सारे के सारे तत्व हम भगवान के सामने लेकर आते हैं.
So of course we may wonder, well, everything comes from the Supreme Lord, so why are we offering things to the Supreme Lord?
आपके मन में ये बात आ सकती है कि ये सब कुछ तो भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, तो फिर भगवान को ये सब फिर से दिखाने की क्या आवश्यकता
है? So actually the elements are simply a display of the Lord's powers. They are actually not even the Supreme Lord or the equal, but they display some of his powers.
तो ये जो सारे शुद्ध तत्व हम भगवान को दिखाते हैं ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि भगवान ही इन सभी शुद्ध तत्वों का स्रोत है.
So in the Bhagavad Gita, of course, Krishna says, I am the original fragrance of the earth. The earth is related to the Lord. Fragrance is related to the Lord. I'm the taste of water. I am the heat and fire. I am the sound of ether. So everything in the material world that's nice is actually representing the Shakti of the Lord.
तो जैसे गीता में वर्णन आया है, भगवान बताते हैं कि भूमि में जो सुगंध है वो मैं हूँ. और इस प्रकार के अनेकों वर्णन में जहाँ भगवान ने सर्वोत्तम तत्वों के बारे में बताया है कि उनका स्रोत वो है, तो यही इस पूरे इस क्रिया का कारण है, इसको दर्शाने का.
So indirectly we can say they are spiritual because they represent the Lord even through the material world.
तो हालांकि ये भौतिक तत्व से बने हुए हैं, परंतु क्योंकि ये भगवान की शक्ति से निर्मित हुए हैं इसीलिए ये आध्यात्मिक माने जाते हैं.
And so by offering that to the Lord, we simply recognize and acknowledge that He is the source of everything in the material and in the spiritual.
और इन्हें पुनः भगवान की सेवा में अर्पित करके हम इसी बात को समर्थित करते हैं कि वास्तव में भगवान हर तत्व का स्रोत है.
Yeah, So we use these things in the material world, and one reason, of course, is because around us we don't have any spiritual objects. Secondly is people can associate things to this material world and have some association. This is fire, this is water, etc. They can relate to us.
So one reason is that because our आसपास कोई आध्यात्मिक वस्तुएं हम देख नहीं सकते, तो इसलिए हमें ऐसी वस्तुओं से ही इस क्रिया को करना होता है जिनसे हम जिनका हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं इस भौतिक शरीर में.
So we offer everything to the Supreme Lord.
और इसीलिए ये सारी की सारी वस्तुएं भगवान को अर्पण कर दिया.
And of course, Krishna says, I am the sound in ether.
और जैसे भगवान ने कहा है कि खम जो है इसमें मैं शब्द के रूप में
साउंड आल्सो हैज अ मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्पिरिचुअल लाइफ.
परंतु इस ध्वनि या शब्द का जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग किया है.
वी हैव स्पिरिचुअल साउंड.
तो आध्यात्मिक ध्वनि होती है
दैट इज मंत्र.
वो है मंत्र.
व्हिच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द डीटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड.
जो साक्षात भगवान और उनके विग्रह से अभिन्न है.
So though it may appear to be material sound because when it comes to the airwaves, etc., their eardrum, etc., actually it is very different.
तो हालांकि ये इस भौतिक संसार में ही हम अनुभव करते हैं और हमारे कर्णों के द्वारा हम इन्हें सुनते हैं, किंतु ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये जो ध्वनि है ये साधारण नहीं है, आध्यात्मिक है.
When a devotee chants the name of the Lord, it actually comes in the spiritual world, comes into the jiva, comes out of his tongue.
जब कोई भक्त भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो ये जानना चाहिए कि वो आध्यात्मिक संसार से वो ध्वनि आ रही है जो उस व्यक्ति की जिह्वा से आपके कर्णों तक पहुंच रही है.
So as I mentioned previously, chanting the holy name was always very essential even in the deity worship.
तो ये मैंने पहले ही बताया है कि भगवान का नाम कीर्तन करना ये अर्चक विग्रह की सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है.
So therefore, kirtan is a very important element of our pratishtha karma.
तो इस प्रतिष्ठा कर्म के संस्कार में कीर्तन करना एक बहुत ही विशेष अंग है.
So this is one of the chief means by which we're transforming the material things into spiritual things.
और ये एक बहुत ही सीधा और सरल तरीका है जिससे भौतिक तत्वों को आध्यात्मिक बनाया जाता है.
So this morning then we have the nyasa, the tapanyasa, the shruti-nyasa, the samharnyasa, etc. This nyasa simply means placing, it actually means placing mantras on the deity.
So aaj subah jo karyakram hua wo tha nyas ka karyakram, jisme alag alag prakar ke shuddhikaran ka karyakram kiya gaya, jo abhi jaisa varnan kiya tha usi tarike se kiya gaya tha.
So this is another method through mantra of energizing the limbs and the organs, the senses of the.
और जैसा आपने देखा कि जब मंत्रोच्चार हो रहे थे तो विग्रह के अलग अलग अंगों को स्पर्श करके उन्हें जागृत किया जा रहा था.
We have hari vasas of different sorts, like the jal hari vas, putting in water, or the fire hari vas, the flower hari vas, etc. Submerging in green, danya hari vas. So these are the whole body, the whole form of the Lord is energized by the different elements like water, rains, flowers, etc.
तो आदिवास भी कई तरीकों के होते हैं, जैसे जल आदिवास, भगवान को जल में लेटाया जाता है, पुष्प आदिवास, भगवान के ऊपर पुष्प डाला जाता है, शयन आदिवास जहाँ भगवान को लेटाया जाता है, और अनाज के द्वारा भी किया जाता है आदिवास.
Okay, so why these different elements? Because even in the material world, these different things have very powerful qualities. For instance, water. Water is worshipped in the Vedas. We'll find many verses praising water, unlike many scriptures in the world that find in the Vedas. So many things praising water.
तो जल इत्यादि ऐसे तत्वों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस भौतिक संसार में जल बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई शास्त्रों में जल की आराधना की जाती है.
And of course, now science also realizes the importance of water. That actually, if there's no water, there's no life.
और वैज्ञानिकों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि जल इस सृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है. बिना जल के कोई जीवन नहीं रह सकता.
And scientists are searching out in space, so they're searching for life. First, they're searching for water. If there's water, then there'll be life. So they're searching for a planet with water on it.
और जो वैज्ञानिक हैं वो अनेकों ग्रहों में जाकर ये खोज रहे हैं कि वहाँ जीवन है कि नहीं, और सबसे पहले वो ये खोज रहे हैं कि वहाँ पानी है।
Environmentalists also tell us that in the future the major wars are going to be fought over water, because water will be very scarce on the earth. That's where life is. So there'll be wars over water.
आधुनिक विशेषज्ञों ने ये भी बताया है कि आगे चलकर जो युद्ध होंगे इस संसार में वो इस तरह के प्राकृतिक तत्वों के लिए होंगे जैसे जल।
So of course, water is very intimately associated with life. It is also associated with purity.
जैसा हम अभी देख रहे हैं कि जीवन पानी से सीधा संबंधित है, उस तरह से शुद्धता का संबंध भी जल से होता है।
And therefore we use water for bathing, water for ashram, etc.
और इसीलिए जल का उपयोग हम स्नान करने के लिए और अनेक प्रकार का शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं।
So grain adipas is there for seeds. Seeds are also very, very interesting because just a little thing, but a little particle, we get huge trees coming out.
तो अनेकों प्रकार के जो अनाज हैं, धान्य हैं, उनसे भी आदिवास किया जाता है, क्योंकि धान्य के अंदर बहुत शक्ति है। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि वो एक वृक्ष खड़ा कर सकता है।
So a little small seed, and we cannot imagine the power of that seed, because later on it manifests as a huge tree. But it's all stuck inside that little seed.
तो कल्पना करिए कि एक छोटे से बीज में कितनी शक्ति होती है। वो शक्ति जब हम उसे बीज को धरती में बो देते हैं तो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद एक बड़ा सा वृक्ष खड़ा हो जाता है।
We have gems, so we have usually put the jewels under the leaves, Brahmanyasa.
तो अनेकों प्रकार के ऐसे रत्न हैं जिनमें भी कई शक्तियां हैं जो कई कई प्रकार की पीड़ाओं को ठीक कर सकते हैं।
So gems are considered to be very powerful. They have some special shakti to them.
और ऐसे रत्नों में कई प्रकार की शक्तियां पाई गई हैं।
The example is given in the scriptures that by placing a gem on your head, for instance, you can cure a disease on your foot. So somehow the shakti can transfer all over the body. How it happens, we can't say, but somehow the shakti goes.
तो ये वर्णन आता है शास्त्रों में कि कई ऐसे रत्न हैं जिनमें इतनी शक्ति है कि अगर वो आपके सर पे रख दिया जाए तो आपके पैरों की कोई समस्या है वो ठीक हो जाएगी।
So of course we also know crystals are very have some sort of special energy and they're even used in electronics.
और क्रिस्टल नामक एक और एक दूसरा रत्न है जिसमें भी कई शक्तियां पाई गई।
So gems are these particular gems which represent also particular planets.
और कई ऐसे रत्न हैं जो विशेष कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका और उन्हें नवरत्न कहते हैं।
So the grahas also have their influence.
तो ये जो ग्रह हैं, इनका भी इस भौतिक संसार में बड़ा प्रभाव होता है।
So all of that is combined in the gems, and then the gems are also put under the.
तो ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये अनेक ग्रहों की शक्तियां इन रत्नों में डाल दी जाती हैं।
Of course, ultimately the Lord is the source of all of these things. It's the source of the grahas and the gems, the source of all of the seeds, everything.
परंतु अंततः ये हम सब जानते हैं कि भगवान इन सारे शक्तियों के स्रोत हैं, इन सारे रत्नों के बीज जो हैं, इन सब के स्रोत भगवान हैं।
So as I mentioned, the kirtan is actually the most important element of all.
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन सारी क्रियाओं में सबसे विशेष महत्वपूर्ण है भगवान का कीर्तन।
And because the name is so powerful, it was also the yuga dharma.
और क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है, इसीलिए वो युग धर्म भी है।
Even if you're not qualified by initiation or whatever, you can still chant the name of the Lord.
और यदि आपके पास दीक्षा भी ना हो और आपने दीक्षा नहीं ली हो, फिर भी आप भगवान का नाम लेने के लिए योग्य हो।
And the name is so powerful that even if you accidentally chant the name, you can get free of all your karmas.
और भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावशाली है कि अगर आप गलती से भी भगवान का नाम ले लो तो भी आपको बहुत लाभ होगा।
So we talk about mystical gems, etc. But the name is the most mystical of all.
तो जैसा अभी अभी हम अनेकों प्रकार के चमत्कारी पत्थरों की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कारी पत्थर तो भगवान का नाम स्वयं है।
because Gyanis and Yogis will spend thousands of years trying to get rid of karma, and you accidentally chant the name of Krishna, and suddenly all your karmas are gone.
तो ज्ञानी और योगी जो है वो हजारों हजारों वर्षों की तपस्या कर रहे हैं अपने कर्मों से छुटकारा पाने की, और अगर आप गलती से कृष्ण का नाम ले लो तो ये सारे कर्म आप छोड़ सकते हैं।
Okay, so anyway, in the Pratishtha ceremony, we have all of these elements, the rings, the mantras, and the gems used to infuse the deity with power, which is actually coming from Krishna himself.
तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसमें यही किया जाता है कि ये अनेकों विधियों द्वारा मंत्रों द्वारा अनेकों जो उपचार किए हैं सबके द्वारा भगवान को हम आमंत्रित कर रहे हैं।
So this is one stage of, let's say, giving shakti and power to this bodies.
तो ये जो विग्रह हैं इनका एक ये तरीका है कि इनके अंदर इस प्रकार की जागृति लाई जाए।
So in this way, we remove all the physical impurities, etc., mental impurities, and environmental impurities.
तो इस प्रकार से जितनी भी अनेक प्रकार की अशुद्धियां हैं, जैसे मानसिक हैं, या प्राकृतिक हैं, वैदिक अशुद्धियां हैं, इन सब को हटाने का ये तरीका है।
And then we infuse the energy.
और फिर वो शक्ति है, जो परम शक्ति है, उसको उस मूर्ति में, भगवान के विग्रह में लाई जाती है।
So then the last step is the most important of all. But first we have to get the purification and be energized.
तो पहले ये सारा शुद्धिकरण का कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद जो अंत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो ये है।
So the last step is calling the deity into that form.
और वो है कि भगवान को उस विग्रह में आमंत्रित होने के लिए, उसमें प्रवेशित होने के लिए प्रार्थना करना।
So we cannot call the form, the deity, or the Lord into our form.
तो क्योंकि हम भगवान को किसी अशुद्ध तत्व में नहीं बुला सकते, इसलिए ये सारा शुद्धिकरण का कार्यक्रम होता है।
So all these ceremonies and the karma have created the proper environment for the Lord.
तो ये जितना भी अभी वर्णन हुआ है, ये उस वातावरण को बनाने के लिए कि जिसमें भगवान प्रवेश कर सकें।
So this is the final part of the Pratishtha, the Abhatma, calling the Lord directly.
So ये इस पूरी क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम अंग है।
And of course we have different ceremonies like Abhishek, etc., which is welcoming the deity with prayer.
और एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसके बाद हम भगवान का स्वागत करते हैं अभिषेक के द्वारा।
So after Pratishtha then, that form is no longer this metal or wood or stone. It's actually non-different.
तो एक बार जब प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वो किस कोई साधारण पत्थर या धातु का रूप नहीं है, वो साक्षात भगवान स्वयं है।
So because it's non-different, we have to treat them as the Supreme
Lord. और क्योंकि वो साक्षात भगवान है, तो उनकी सेवा भी उसी भाव से करनी चाहिए।
So we know when a child is born in a house, then the mother has to do everything for the child, bathe the child, clean the child, feed the child, look for the child, dress the child, everything. Mothers do this.
So उदाहरण के रूप में जैसे किसी के घर में कोई शिशु पैदा होता है, तो माताएं सब कुछ करती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं, उन्हें नहलाती हैं, उन्हें साफ करती हैं, खाना खिलाती हैं, सब कुछ करती हैं।
So we have to do the same for the deity.
उसी प्रकार से विग्रह के लिए भी सब कुछ करना आवश्यक है।
The mother does this for the child because she has affection for the child.
तो माता अपने शिशु के लिए ये सारे कार्य इसलिए करती हैं क्योंकि उसके दिल में, उसके हृदय में प्रेम है।
So the devotee has to have a similar affection, but it is for the Supreme Lord.
उसी प्रकार से सेवा करने वाले भक्तों के मन में भी यही भावना होनी चाहिए कि वो भगवान से अधिक प्रेम करते हैं।
So the devotee has to see that that form is not stone, it is actually non-different to the Lord, he's an actual person.
और सेवा करने वाले हर भक्त को इसी दृष्टि से सेवा करनी चाहिए कि ये कोई पत्थर नहीं है, ये साक्षात ललिता विशाखा साक्षात भगवान ही है।
And then all of these different services will not be some sort of like a problem or botheration or whatever. They'll actually become an act of service.
और इस भावना में जब हम रहेंगे तो ये जितनी भी सेवाएं हैं ये बोझ नहीं लगेगी और इनको करने में बड़ा आनंद आएगा।
So the deity offers us a opportunity to directly serve the Lord.
तो विग्रह हमें एक अवसर देते हैं कि जिससे हम सीधे भगवान की सेवा कर सकते हैं.
We don't have any other opportunity.
और इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई ऐसा अवसर नहीं है.
All we can do otherwise is in our mind we can imagine something and meditate.
इसके अलावा सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं कि हम अपने मन में स्मरण करके ये सेवाएं कर सकते हैं.
So mental puja also is considered very good.
तो मानसिक पूजा भी बताई गई
है. Unfortunately, most people cannot really do that too well.
परंतु आज के इस युग में मानसिक पूजा करना इतना सरल नहीं है.
So therefore, the Lord very mercifully appears in this form and gives us an opportunity to directly worship.
और क्योंकि मानसिक पूजा इतनी कठिन है, इसलिए भगवान अपने इस व्यक्तिगत रूप में मूर्ति के रूप में प्रवेश हुआ.
So everyone therefore should very very enthusiastically try to serve these forms of the Lord.
और इसीलिए हर भक्त को भगवान की बहुत ही उत्साह के साथ सेवा करनी चाहिए.
So many ways you can serve the Lord.
और यही एक तरीका है जिससे हम भगवान को अनेकों प्रकार से सेवा करते हैं.
Some devotees by directly serving, doing aartis, cooking, etc.
कुछ भक्त हैं जो भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, भोग बनाते हैं, आरती करते हैं.
But other people can serve in other ways.
परंतु अन्य भक्त हैं जो दूसरी तरीकों से सेवा कर सकते हैं.
So cleaning the temple of the Lord is also considered to be a great seva.
तो मंदिर की साफ सफाई करना ये भी एक महान सेवा है.
You see that Ambarish Maharaj was always engaged in serving the deity, so he could clean the temple floor.
जैसे वर्णन आता है कि अम्बरीश महाराज कई तरह की सेवा करते थे और मंदिर की साफ सफाई आदि का कार्य करते थे.
One can make gardens for the Lord.
हम भगवान के लिए सुंदर हार बना सकते हैं.
One can buy things for the Lord like food items, flowers, and fruits, etc.
जो भगवान के लिए अनेकों प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको खरीद के लाने का कार्य भी कर सकते हैं.
And of course, simply chanting the name of the Lord is also service.
और सबसे बड़ी बात सिर्फ भगवान का नाम लेना भी एक बहुत बड़ी सेवा है.
The Lord is most pleased if you chant his name.
और भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं अगर आप उनका नाम लो.
So if you come to the temple and chant Hare Krishna, this is service to the Lord also.
तो हरे कृष्णा मंदिर में आकर हरे कृष्णा का कीर्तन करना भी बहुत बड़ी सेवा है.
So there's all sorts of ways in which you can participate in pleasing Krishna.
तो इस प्रकार से हर व्यक्ति भगवान कृष्ण के आनंद के लिए कई प्रकार की सेवाओं में लग सकता है.
The whole idea here is that the deities provide as a focus for serving.
महत्वपूर्ण बात यह है कि जब विग्रह सामने होते हैं तो वो केंद्र बिंदु बन जाते हैं हमारी सारी सेवाओं का.
And service means voluntarily with great affection we are doing something for the Lord.
और सेवा का मतलब यही है कि स्वेच्छा से बहुत ही आनंद पूर्वक भगवान की सेवा करता है.
Without expecting any material returns.
बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लाभ के ये सेवा करते रहता है.
However, the Lord is very merciful and immediately he does give something in return.
किंतु ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देंगे. भगवान बड़े कृपालु हैं और जो इस भावना से करता है उसे सब कुछ मिलता है.
He creates internal peace and happiness.
वो ऐसे भक्त के हृदय में सच्चा आनंद और सुख का अनुभव करता है.
Immediately when you serve the Lord without any material intentions, then you become very happy.
तो सबसे बड़ा उसका परिणाम यही दिखता है कि जो सच्ची भावना से सेवा करता है वो पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है.
At a certain stage of progress, this becomes ananda.
और आगे बढ़ते बढ़ते ये एक आनंद का रूप.
So, in the scriptures, that's why we have these ceremonies. You go for the purchase ceremony, then the deity is there, provided the Vaishnavas on the ceremony.
एक प्रश्न ये था कि ये प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद ये कैसे पता चले कि भगवान वास्तव में आए हैं नहीं. तो महाराज का उत्तर ये था कि ये सारा जो संस्कार है यही इस बात का प्रमाण है कि भगवान आ गए हैं. तो इसी ये जो वैदिक संस्कार है इनका सबसे बड़ा महत्व है. ये संस्कार जब हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान प्रवेश कर गए.
Now of course if you're in the house and you haven't done it, it's better that you have done it. You do a pratishtha for your deity. It could be a simple one, but nevertheless there'll be something there. So there's a difference between just simply putting a deity there and doing some worship on someone.
और जो भक्त अपने घर में भी भगवान की जो पूजा करते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत संस्कार करना जरूरी है. थोड़ा बहुत यज्ञ वगैरह आप तो कीर्तन भी करा सकते हैं. ऐसा कुछ कार्यक्रम करना जरूरी है.
So according to Pancharatra standard, you should have a Diksha, second initiation, and then you are qualified to do the puja. That's the Pancharatri standard.
पंचरात्रि के विधि के अनुसार दीक्षा अगर हो गई हो और आपने ब्राह्मण दीक्षा ले ली हो तो आप अवश्य ही मूर्ति भगवान की दृश्य और विग्रह की पूजा कर सकते हैं।
Of course, we also know many people aren't second initiated. They may have boarding tie, etc. Common around here. They may have boarding tie, they're not second initiated, etc. So it's not Pancharatri standard.
तो यदि आप सेवा कर भी रहे हैं तो पंचरात्र के अनुसार शायद उचित ना हो परंतु ये ठीक है।
Now of course you can say, well, Chaitanya is very merciful even to the aparadis and the fallen people. So maybe Gaudiya can go beyond Pancharatra.
तो उसका उसको इसी तरह से समझ सकते हैं कि गौरविता इतने परम बादल हैं तो वो पंचरात्र की विधि की चिंता के बिना ही आपकी सेवाएं स्वीकार लेते हैं।
Still, even if we are not up to that standard, we have to be quite serious about the and regulated in the worship of the deities.
But the फिर भी आवश्यक है कि सेवा करने वाला हर व्यक्ति हर भक्त बहुत ही ध्यानपूर्वक और सुंदर ढंग से नियमित ढंग से सेवा करे।
अच्छा, what is the minimum requirement for deity worship of the house? Minimum requirement?
Which form?
Requirement.
Well, I think they're probably don't have a council to set up those standards. you have some sort of president. Usually they'll set up some standards that you should do so many RDs a day and you know, these two RDs a day or something, bathe in these every day or every several days or whatever like this, rest every day or whatever. There's some standards that you set up. So you should probably follow those standards. Otherwise, what happens is you do anything and eventually you may offer once a week and change the clothes once a month or something. So that is very below standard. So, you know, you have to have some minimum standards there also.
So, the question was that for the Gaudiya service, the most minimum standard, which we can keep? So, Maharaj Dev has given that whatever you have समुदाय में आपके भक्तों के संग्रह में जो कुछ भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनका पालन करना जरूरी है परंतु ऐसा भी ना हो कि हम बहुत ही निम्न रखें जैसे महीने में एक बार भगवान के वस्त्र बदलना या हफ्ते में एक बार आरती करना ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ जितने भी स्तर हो उत्तम से उत्तम करने की कोशिश करें।
Being you being an astrological scholar, I would like to ask you a question. How far or to what extent should a devotee consult astrology regarding important decisions in life, like marriage or any other decisions? But it's also said that devotees are like beyond transcendent astrological calculations don't count, like all these constellations and nakshatras. That's like all the own planets are servants of Krishna. So when anybody chants the holy name, he should be transcendental to all these astrological calculations. So how, to what extent should a devotee consult astrology?
Well, definitely a devotee should become detached from all the circumstances, but unfortunately, generally, everybody isn't, so they still have to inquire, when am I going to get married, when am I going to get my promotion, etc.
इनका प्रश्न ये है क्योंकि महाराज ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञान वैज्ञानिक व्यक्ति हैं उनका प्रश्न ये है कि भक्तों को ज्योतिष शास्त्र को कितनी महत्वता देनी चाहिए कोई भी निर्णय लेने के समय तो महाराज ने कहा कि वैसे तो हर भक्त का यही लक्षण है कि वो परिस्थितियों से निराशक्त हो जाए और अपना जीवन काल व्यतीत करता है लेकिन ऐसा होता नहीं
है। So some devotees reach a stage where it doesn't matter for them what happens and they don't have to know about what happens in the future. If I get a promotion, my job fine, I don't, that's okay. If I get married, it's fine. If I don't get married, it's fine. If I have children, it's fine. If I don't have children, it's fine. They just go on to the devotee. Very good.
तो आप अगर ऐसे वैराग्य के स्तर को पहुंच गए हैं जहां पर क्या मिला क्या नहीं मिला इससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ता है तो फिर ज्योतिष शास्त्र की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
So, that person doesn't need any astrology.
ऐसे व्यक्ति को ज्योतिषी की कोई जरूरत नहीं।
However, other devotees still have worries.
परंतु आमतौर पर देखा गया है कि ज्यादातर भक्त हम सब चिंता में रहते हैं।
So, what is the future going to be?
भविष्य में क्या होगा?
Is it determined by karma or not?
ये हमारे कर्मों के द्वारा निर्धारित हुआ है नहीं?
In one sense, no, because Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, all karmas are destroyed.
एक दृष्टि से देखा जाए तो नहीं, क्योंकि अगर आप हरे कृष्ण बोल रहे हो तो आपके कर्म साथ साथ जल रहे हैं.
However, we see also ultimately, even after chanting, Nama Narayan looked like he was still under karma, he still committed sinful activities, still doing many things.
परंतु दूसरी और अजामिल की कहानी भी है कि जिसने भगवान का नाम तो लिया लेकिन साथ साथ दुष्कर्म भी किए.
So, though chanting the holy name in devotional service, the general destroys karma, there's still a pattern of karma.
तो बात यह है कि भक्ति के द्वारा भगवान के नाम के द्वारा कर्म का विनाश होता है परंतु वो उसका भी अलग अलग स्तर है.
So, the events predicted by astrology will happen in some sort of pattern, not in the same intensity, but they'll do a pattern.
तो ज्योतिष के द्वारा, ज्योतिष ज्ञान के द्वारा जो भी भविष्य की जो घटनाएं हैं जो बताई जाती हैं उनका भी एक तरीका होता है वो कैसे आती है.
Obviously, devotees call out bodies. Bodies is also a karma.
हम सब के पास ये भौतिक शरीर हैं, ये भी तो एक कर्म है.
So that body remains, a little pattern of karma remains for the devotee.
जब तक हम भौतिक शरीर में बद्ध हैं, तो इसका मतलब कि हम कर्म से मुक्त नहीं हैं.
So if you're in anxiety, then you go to this astrologer and get some advice, but be very careful.
तो अगर आप चिंताओं से ग्रस्त हैं, तो जाइए ज्योतिषी के पास जाइए, लेकिन ध्यान रखिए.
If they start telling you to worship so many different devatas, or do this puja or that puja or whatever, or buy this expensive jewel and all this, be very careful.
अधिकतर लोग जब ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की पूजा बताई जाती है, ये रत्न पहनो वो रत्न पहनो.
Better you get advice from a Vaishnava.
तो सबसे अच्छा है कि किसी वैष्णव के पास जाएं, जैसे महाराज स्वयं.
And as I said, the different planets are under the control of different forms of the Lord, so at least worship forms of the Lord, not devatas.
क्योंकि महाराज के जैसे वैष्णव ज्योतिषी होंगे तो वो आपको सही दिशा में सही अवतारों की पूजा करने का ही मन करेंगे.
धन्यवाद.